नया संदेश ले फिर से, नई ज्योति जगे फिर से, नया संदेश ले फिर से, नई ज्योति जगे फिर से। उठो तपस्वियों जागो, उठो तपस्वियों जागो, नया लक्ष्य साधने का समय फिर आ रहा है। कि तपस्या का परम श्रृंगार करने का समय फिर आ रहा है। चलो अब एक नई मशाल की ज्वाला फैले, चलो अब एक नई मशाल की ज्वाला फैले। अज्ञान के घनघोर अंधकार में फिर कि मधुर रागिनी का साज भर दे, सन्नाटों से भरी वीरानियों में फिर भटकती आत्म ज्योति, भटकती आत्म ज्योति। निशा के बाद हरदम ही सूरज आता रहा है, यह जीवन की गति रही है। मैले पंख में ही पंकज खिलते रहे हैं, मैले पंख में ही पंकज खिलते रहे हैं। असंभव होने पर फिर हृदय में संभव की आशाएं जीत की जलती रही है। असंभव होने पर फिर हृदय में संभव की आशाएं हरदम जलती रही है। असंभव आज का सच है, असंभव आज का सच है, संभव होना है फिर भी। उठो वैरागियों, उठो वैरागियों, नव क्रांति का सूत्रपात करने का समय फिर आ रहा है। उठो वैरागियों, नव क्रांति का सूत्रपात करने का समय फिर आ रहा है। कि साधना की कठोर झंकार करने का समय फिर आ रहा है। नया संदेश ले फिर से, नई ज्योति जगे फिर से। उठो तपस्वियों जागो, उठो तपस्वियों जागो, नया लक्ष्य साधने का समय फिर आ रहा है। कि तपस्या का परम श्रृंगार करने का समय फिर आ रहा है, फिर आ रहा है, फिर आ रहा है।
ओम शांति। नरदेव देव, जय नरदेव देव। शक्ति समुद्र समुत्थतरंगम, दर्शित प्रेम विजुंगितरंगम, संशय राक्षस नाशमहस्त्रम, यामि गुरुम शरणम भव वैद्यम। अद्वय तत्व समाहित चित्तम, प्रोज्वल भक्ति पटावृत वृत्तम, कर्म कलेवर मद्भुत चेष्टम, यामि गुरुं शरणं भव वैद्यं। नरदेव देव, जय नरदेव देव। शक्ति का जो समुंदर है उसकी तुम एक तरंग हो। शक्ति समुद्र समुत्थ तरंगम, दर्शित प्रेम विजंबी तरंगम। अपना प्रभु प्रेम, दिव्य प्रेम को दर्शाने वाले ऐसा गुरु। संशय राक्षस नाश महस्त्रम, संशय रूपी राक्षस का नाश करने वाला, जैसे वो क्या है, अस्त्र है एक, ऐसे गुरु के प्रति नमन। यामि गुरुम शरणम भव वैद्यम, गुरु को क्या कहा गया? वैद्य है वो, वैद्य अर्थात चिकित्सक, डॉक्टर, भवरोग से ग्रसित है मानवता, बंधनों में फंसी हुई है, विकारों में फंसी हुई है, ऐसे विकारों से मुक्ति दिलाने वाला वह गुरु। यामि गुरुम शरणम भव वैद्यम अद्वय तत्व समाहित चित्तम प्रोज्वल भक्ति पटावृत वृत्तम। अद्वय तत्व में वो गुरु निरंतर स्थित है, उस परमात्मा की याद में जो निरंतर लीन है, ऐसा गुरु, ऐसे गुरु को नमन, ऐसे गुरु की मैं शरण आता हूँ। कर्म कलेवर मद्भुत श्रेष्ठम, निरंतर मानवता के कल्याण के लिए निस्वार्थ कर्म में जो लगा हुआ है वह गुरु। रोजवल भक्ति पटावृत वृत्तम, जिसका हृदय शुद्ध प्रेम से आवृत है, ऐसा गुरु। जो भववैद्यम है, शिव को क्या कहा जाता है भक्ति में? वैद्यनाथ। वैद्यनाथ अर्थात द डिवाइन फिजिशियन। यदि उस परम गुरु के प्रति वह समर्पण भाव हो तो जितने रोग है शरीर के, मन के, दृष्टि के, वृत्ति के, सब सब हट जाएंगे। परंतु वैसा समर्पण भाव इंटेंसिटी कितनी तीव्रता है भावों की, उस पर उपचार निर्भर करता है। उपचार होगा या नहीं होगा, ठीक होगा कि नहीं होगा, रोगी का विश्वास, लॉ ऑफ फेथ, लॉ ऑफ लव, लॉ ऑफ सरेंडर, कितना समर्पित है वो, उस पर निर्भर है कि रोगी अपने रोग से मुक्त होगा। यदि उस समर्पण में परसेंटेज है, यदि उसके विश्वास में परसेंटेज है, तो वो रोगी उतना ठीक नहीं होगा जितना होना चाहिए। वैद्यनाथ आया हुआ है भवरोग से मुक्ति दिलाने। भव अर्थात भव सागर क्या होता है? भव अर्थात बी इंग, भव अर्थात भव सागर किसको कहते हैं? संसार को। भव सागर, संसार सागर अर्थात संसार में दुख है, समस्या, परिस्थितियां। भव सागर अर्थात भाव, भव अर्थात भावना। भव अर्थात जन्म मृत्यु का सागर। यामि गुरुम शरणम भव वैद्यम, वो भव वैद्यम है अर्थात ये भव सागर जो है जन्म मृत्यु का जो सागर है, मृत्यु फिर जन्म, मृत्यु फिर जन्म। आत्मा पतित क्यों बनी? उसके कई कारण है, उसका एक कारण है पुनर्जन्म। देवताओं की डिग्री कम क्यों हुई सतयुग से त्रेता अंत तक? पुनर्जन्म। कोई पाप कर रहे थे ना? रीबर्थ इट्सेल्फ आत्मा को पतित बनाता है। इसीलिए भव रोग कहा गया है भक्ति मार्ग में, इसलिए परमात्मा को भव वैद्यम कहा गया है, और इसलिए भव रोगी भव वैद्यम से प्रार्थना करता है। शक्ति समुद्र समुत्थ तरंगम, दर्शित प्रेम विजिंबित रंगम, संशय राक्षस नाश महस्त्रम, यामि गुरुम शरणम भव वैद्यम। तो आज हम देखेंगे प्राणिक चिकित्सा, चाहे कोई भी रोग हो शरीर का या मन का या आत्मा पर चिपके हुए विकारों का रोग, उसे क्या किया जाए जो वो ठीक हो जाए। संसार में हजारों प्रकार की पैथी है, एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, एरोमाथेरेपी, ऑक्यूप्रेशर, ऑक्यूपंक्चर, पंचकर्मा, कितना कुछ है, एरोमाथेरेपी, साउंड थेरेपी, चक्रा हीलिंग, एनर्जी हीलिंग, प्राणिक हीलिंग, रेकी, क्रिस्टल हीलिंग, अनगिनत, उसका कोई अंत ही नहीं है। हजारों लाखों प्रकार की हीलिंग थेरेपीज है, हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे। हम चर्चा करेंगे हम स्वयं स्वयं को कैसे ठीक करें बिना किसी की मदद के। जो कुछ दवाइयाँ और बाकी सब है वो सब ठीक है, वो चालू रखना है, परंतु साथ साथ और क्या किया जाए जिससे ये जो हीलिंग प्रोसेस है वो फास्ट हो जाए। क्योंकि हमारे शरीर में ऐसे कई गुप्त रोग अब भी छिपे हैं जो अभी अभिव्यक्त नहीं हुए, मैनिफेस्ट नहीं हुए, भविष्य में हो सकते हैं। तैयारियां अंदर चालू है, तैयारियां जोरों शोरों पर चालू है। आग कब भी लग सकती है, चिंगारी की तलाश है बस। इसलिए प्राणी की यात्रा का ये दूसरा चरण, दूसरा चरण का आज का चौथा दिन, और भट्टी का आज का 134वां दिन। तो दूसरा चरण अर्थात ऑपरेशन चालू हो चुका है। पहला चरण था स्नान, दूसरा चरण अर्थात ऑपरेशन चालू हो चुका है। हम प्राण के जगत में खेल रहे हैं, और जो जो दोष है भीतर उसे हटा रहे हैं। और इस प्राणिक यात्रा में एक सबसे महत्वपूर्ण बात है, और वो है समर्पण, सरेंडर। स्वयं के शरीर को और मन को उस प्राण ऊर्जा के सामने समर्पित कर देना है, ताकि वो प्राण ऊर्जा हमारे भीतर भर जाए। प्राणिक सरेंडर, जितनी तीव्रता होगी समर्पण की, उतना वो समर्पण दीर्घकालीन होगा। लास्ट संडे की मुरली थी दृढ़ संकल्प, उस दिन हम चर्चा कर रहे थे संकल्प दृढ़ हो उसके लिए क्या किया जाए। तो कौन सी बातें देखी थी, किस स्थान पर संकल्प किया जा रहा है, किस समय संकल्प किया जा रहा है, किस व्यक्ति के सामने संकल्प किया जा रहा है, संकल्प करते समय मनसा मंशा कितनी शुद्ध है, और संकल्प करते समय मन में आशा कितनी है, और सबसे महत्वपूर्ण संकल्प करते समय इंटेंसिटी ऑफ इमोशंस कितनी है। वो भीष्म का संकल्प यदि वो परिस्थिति नहीं होती तो इतना शक्तिशाली नहीं होता, अगर वो चाणक्य का संकल्प वो अगर वो परिस्थिति नहीं होती तो इतना शक्तिशाली नहीं होता है। जब भावनाओं की तीव्रता होती है तब संकल्प में तीव्रता आती है। ऐसे ही बैठे बैठे यहां संकल्प कर लिया, ठीक है कल से मैं अमृत वेला करता हूं, तो ऐसा कभी सफल नहीं होता है। तीव्रता चाहिए, इंटेंसिटी ऑफ इमोशंस चाहिए, आवेग चाहिए, जोश। परिस्थितियां विपरीत थी, उसमें जब संकल्प किया जाता है इंटेंस इमोशंस के साथ, तब वो संकल्प शक्ति बन जाता है। ये गीत अभी जो सुना, जो हमने गाया या बोला, शब्द कितने साधारण हैं वो हमें अभी पता पड़ रहा है। इसको हमने सबसे पहले सुना उस मन की अवस्था में जहां संसार जैसे हाथ से छूट गया था, सब कुछ छोड़ चुके थे, कुछ नहीं चाहिए यहाँ का, एक परमात्मा के अतिरिक्त। हावड़ा बेलूर मठ कोलकाता में भव्य आश्रम था, उस आश्रम के बीच ये गीत बजा अचानक, और जैसे ही बजा हम गिर गए थे, फेंट। नरदेव देव नरदेव देव शक्ति समुद्र समुद्र तरंगम दर्शित प्रेम विजुंबित रंगम संशय राक्षस नाश महस्त्रम। परिस्थितियां कौन सी है, वातावरण कौन सा है, मन की दशा क्या है, दिशा क्या है, ऐसी दशाओं में दिशाओं में जो संकल्प लिए जाते हैं कि यही है और यही है, इसके अतिरिक्त जीवन का और कोई लक्ष्य नहीं है, बस ईश्वर को पाना है और कुछ नहीं करना है, तब हम इस ज्ञान में नहीं थे, ना ही इसके बारे में कुछ पता था, परंतु संकल्प था उस तक पहुंचना है, उस गुरु तक, उसी गुरु की हम शरण में हैं, और इस विकारों के रोग से मुक्त होना है, भव रोग से। यामि गुरुम शरणम भव वैद्यम। तो इससे पहले कि हम प्राणिक चिकित्सा देखें, पहले गीत सुन लेते हैं। आप लोग मत गिर जाना। गीत लिखा है स्वामी विवेकानंद ने, गीत हमने सुना था रामकृष्ण मठ हेडक्वार्टर्स बेलूर मठ में, जहां हम गए थे 2002 में ज्ञान में आने से जस्ट थोड़ा पहले कि वो भूमिका चालू थी, वहां पर मंत्र दीक्षा हुई थी, एज 22, MBBS पूरा हो गया था और तीव्र वैराग जागा था, ये सब संसार व्यर्थ हो चुका था, कुछ भी नहीं चाहिए, सब छोड़ दिया था, और एक ही लक्ष्य, एक ही इच्छा, भगवान को पाना है बस। हमारी मंत्र दीक्षा भी हुई थी स्वामी रंगनाथानंद के द्वारा, जो उस समय रामकृष्ण मठ के प्रेसिडेंट थे, वहां पर ये गीत सुना था। Thank you. एक स्त्री अपने छोटे से बच्चे को लेकर किसी मेले में जाती है और वो मेला इतना भव्य है, इतनी सारी चीज़ें वहाँ पर हो रही है, कहीं कोई खेल हो रहा है, कहीं डांस हो रहा है, कहीं नृत्य, कहीं संगीत, कहीं ढेर सारी दुकानें हैं, इतनी रंग बिरंगी मेला है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। और वो उस मेले को देखते देखते इतनी व्यस्त हो जाती है कि उसका छोटा सा जो बच्चा होता है जिसको हाथ से पकड़ के है, वो हाथ कब छूट जाता है उसे पता ही नहीं चलता है, और थोड़ी देर के बाद देखती है वो बच्चा खो गया है, क्योंकि मेला देखते देखते इतना व्यस्त हो गई थी। और अब उसको पता चलता है मेरा बेटा खो गया है, और तब चिल्लाना चालू करती है मेरा बेटा, और सब जगह घूमती है। अब उसे मेला नहीं दिखाई देता है, अब उसे क्या दिखाई दे रहा है, केवल खोज है, मेरा बेटा कहाँ है। हमें क्या दिखाई दे रहा है? यह संसार बड़ा रंग बिरंगी है, सारा ध्यान इस संसार की तरफ रहता है, परंतु वो तीव्रता, जैसे माँ का बेटा खो गया है, वो इस संसार में है, वो इस रंग बिरंगी मेले में है, परंतु अब उसे मेला नहीं दिखता, क्योंकि हृदय में बस एक ही पुकार है, एक ही प्यास है, एक ही उत्कंठा है, मेरा बेटा कहाँ है, मुझे उसको ढूंढना है, उसके अतिरिक्त तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, एक बाप दूसरा ना कोई, उसके अतिरिक्त मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, कोई देहधारी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि सबको देख लिया, सभी कैसे हैं, दुख देने वाले, धोखेबाज, एक उसके अतिरिक्त मुझे कुछ भी नहीं भाता, और वही है जो मुझे ठीक कर सकता है, मेरे सारे दुखों को ठीक कर सकता है। यामि गुरुम भव भय वैद्यम, मैं तुम्हारी शरण में हूं, समर्पण उसके प्रति, उस एक के प्रति, तुम बताओ अब मैं क्या करूं, अब तक का ये जीवन है, इस जीवन में ये किया है, ये करना बाकी है, ये रोग है, समर्पण उसके प्रति। तो आज हम चर्चा करेंगे, प्राणिक चिकित्सा में सबसे पहली चीज है प्रार्थना, साइंटिफिक प्रेयर। शरीर में कोई भी रोग हो, किसी भी प्रकार की बीमारी हो, या मन का कोई रोग है, उदासी है, डिप्रेशन है, घबराहट है, हीन भावनाएं हैं, गिल्ट कॉन्शियसनेस है, मुझसे पाप हुआ है, मुझसे पाप हुआ है, मुझसे पाप हुआ है, वो किया है जो करना नहीं चाहिए था, पाप के लिए दंड मिलेगा, कल की साकार मुरली, परंतु चित्त भारी है, मन बहुत बोझिल है, जो नहीं करना चाहिए था वो हो गया। इस ब्राह्मण जीवन में हुआ, संपूर्ण ज्ञान के साथ हुआ, विस्मृति की अवस्था में। तो सबसे पहली हीलिंग टेक्निक है प्रेयर, और हम काम कर रहे हैं ऊर्जा के तल पर, तो ये सारी सृष्टि में प्राण ऊर्जा भरी हुई है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा कहते हैं, वाइटल फोर्स, वाइटल एनर्जी। तो 24 घंटे में एक बार या दो बार सरेंडर कर देना है, और उस प्राण ऊर्जा का आह्वान करना है, हे प्राण ऊर्जा मेरे शरीर में प्रवेश कर। एनर्जी मेडिसिन कहता है, हम बीमार तब पड़ते हैं जब एनर्जी डिस्टर्बेंसेस होता है एनर्जी के फ्लो में। अगर ये एनर्जी हीलिंग का पर्पज ये है, इस डिस्टर्बेंस को फिक्स करना, ठीक करना, जो गड़बड़ हुई है ऊर्जा के धारा में, ऊर्जा की धारा में, उसको ठीक करना, तो सबसे पहला है प्रार्थना। बाइबल में लिखा है, आस्क एंड इट शैल बी गिवन, सीक एंड ही शैल फाइंड, नॉक एंड इट शैल ओपन, ढूंढो तो मिलेगा, खटखटाओ तो दरवाजा खुलेगा, मांगो तो दिया जाएगा, ये नियम है। जो तुम मांगोगे वो मिलेगा। मनो वांछित फल प्राप्त करने का वरदान है इस यज्ञ को, जो जिसको चाहिए हर ब्राह्मण को वो मिलेगा। प्रसिद्धि चाहिए तो वो भी मिलेगी, नाम मान चाहिए वो भी मिलेगा, सब मिलेगा। इनकॉग्निटो रहना चाहते हो वो भी मिलेगा। तीव्र पुरुषार्थ चाहिए वो भी मिलेगा। पुरुषार्थ करना ही नहीं है ये इच्छा है, वो भी इच्छा पूरी होगी। आराम करूं, खाऊं पीऊं, मौज करूं, मुझे कोई कुछ ना कहे, अगर ये प्योर इच्छा है, एकदम दिल से इच्छा है, तो भगवान इस इच्छा को भी पूरी करेगा। खाओ पियो, मौज करो और सोते रहो, तदास्तु सब मिलेगा मनोवांछित फल। और ये इच्छा है कि इस परिवार के लिए कुछ करूं, इस यज्ञ के लिए कुछ करूं, ये जन्म व्यर्थ ना जाए, कुछ करके जाऊं, एक एक आत्मा के लिए कुछ करूं, एक एक आत्मा मेरी है, मेरा ही विस्तार है, वो भी इच्छा पूरी होगी। ये जीवन ना तरी व्यर्थ, वैसे भी ये जीवन व्यर्थ है, कुछ करके ही दूसरों के लिए कुछ करके जाऊं। तो प्रार्थना करना है उस ऊर्जा के सामने कि हे शक्ति मुझ में प्रवेश कर, मैं समर्पित करता हूं अपने आप को, चाहे बीमारी कोई भी हो, बीपी की हो, शुगर की हो, पाइल्स की हो, फिशर की हो, हार्ट की हो, ब्रेन की हो, फिट्स की हो, मिर्गी की हो, कोई भी हो, या मानसिक हो, या ऐसी हो जो किसी को भी समझ में नहीं आ रही है, पर हमें पता है हम बीमार हैं, बाकी सब कहते तुम ढोंग करते हो, नाटक करते हो, तुम्हारे सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल है। कोई भी बीमारी हो, कारण एक ही है, ऊर्जा में डिस्टर्बेंस। ऊर्जा का फ्लो रिस्टोर हो जाए तो अपने आप ठीक हो जाएंगे। मन में उदासी है, मन में कमजोरी है, वो भी एनर्जी की कमी की वजह से। आह्वान करो उस एनर्जी को, और सबसे बड़ा स्रोत है ऊर्जा का परमात्मा प्राणेश्वर, वो प्राण का सागर है। उस प्राण सागर से प्राण ऊर्जा, प्राण की किरणें लो, प्राण का सूर्य है वो, उसकी किरणें मुझ में आ रही है और मेरे शरीर में फैल रही है। जहां जहां ब्लॉकेजेस है, जहां जहां जिस जिस अंग में मूर्छा है, वहां वो अंग सक्रिय हो जाए। जो चक्र है, चक्र हीलिंग, ऑरा हीलिंग, ऑरा क्लेंजिंग, सब कुछ हो रहा है अपने आप, क्योंकि मुझे नहीं पता शरीर में कहां कहां क्या क्या बीमारी है, सूक्ष्म में है, ब्लॉकेजेस है, मेंटल ब्लॉकेजेस है, इमोशनल ब्लॉकेजेस है, पेट भरा हुआ है फिर भी खाने की इच्छा होती है, मेंटल हंगर है, इमोशनल हंगर है, ये सब बीमारी आई है। अभी अभी सोए हैं, फिर बाद में फिर सोने की इच्छा होती है, उठने के बाद फिर सोने की इच्छा, ये रोग है, थकान सी लगती है, रोग है। तो साइंटिफिक प्रेयर, मांगो वो दिया जाएगा, ये फर्स्ट मेथड। दूसरी मेथड विजुलाइजेशन, मानसिक तस्वीर बनानी है एक, जो हम चाहते हैं स्वयं को, जैसा हम चाहते हैं स्वयं मैं हूं वैसा, अपने आप को देखो, मेरा शरीर लाइट के शरीर में रूपांतरित हो गया है, अब इस शरीर को क्या चाहिए, केवल लाइट। मेरा शरीर चार्जिंग बॉडी बन गया है, जैसे मोबाइल, इसको मटेरियल की आवश्यकता नहीं है, इसको केवल चार्जिंग चाहिए, और चार्जिंग हो रहा है, सूर्य को देख रहा हूं चार्जिंग हो रही है, धरती पर चल रहा हूं चार्जिंग हो रही है, आत्माओं की सेवा कर रहा हूं, अब मेरा भोजन क्या है, दुआएं मेरा भोजन है, प्रेम मेरा भोजन है, मेरा भोजन क्या है, सूर्य की किरणें भोजन है, मेरा भोजन क्या है, खुशी इतनी ज्यादा है कि ये खुशी ही भोजन है, ये साक्षी स्थिति ही भोजन है, फूड सब्स्टिट्यूट्स, वो स्थूल की मुझे आवश्यकता नहीं है, उस साकार की मुझे बहुत कम आवश्यकता पड़ रही है, मैं ऊर्जावान हूं, मैं शक्तिशाली हूं। अपने आप को देखना है कैसा, एक ऊर्जा का व्यक्तित्व के रूप में, एक ऊर्जा का व्यक्तित्व हूं, लाइट बीइंग हूं, फरिश्ता हूं, लाइट का शरीर है, लाइट का कार्ब है, वो हूं मैं। और इसको कब देखना है, चलते फिरते देखते रहना है, जितना स्पष्ट वो दिखेगा। और उसमें क्या करना है, कलराइजेशन, उसमें कलर भरने, एक चित्र बनाना है, कलराइजेशन, पिक्चराइजेशन, उसका पिक्चर बनाना है, एक उसमें कलर भरना है, जो जिसको बनना है। अभी अगर फ्रैक्चर है तो देखो मैं दौड़ रहा हूं, विजुलाइजेशन। अगर यहां दर्द हो रहा है तो देखो यहां का दर्द चला गया है। इस पिक्चर को ही ऐसा क्रिएट कर दिया है हमने, एक पिक्चर क्रिएट कर रहे हैं यहां पर, आंखों से कम दिखाई देता है, देखो मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और प्राणी की यात्रा में और एक फायदा है, जैसे जैसे प्राणी की यात्रा में हम आगे बढ़ेंगे, एक समय आएगा हमारे सेंसेस बहुत शार्प हो जाएंगे, आवाज तीव्रता से सुनाई देने लगेगी, जो दृष्टि है, जो स्मेल सेंसेस है, सेंसेस शार्पन्ड हो जाएंगे एकदम। ये होगा, अपने आप होगा, हम करेंगे नहीं, अपने आप होते जाएगा। केवल इस यात्रा पे बने रहना है बस। और यहां पर पिछले 33 दिनों में जो जो आयाम हम देख रहे हैं वो थोड़ा 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 करते रहना है, और कुछ कुछ पूरा ही करना है जो हो सकता है, चाहे वो एनिमा हो, चाहे वो सन गेजिंग हो, वो पूरा पूरा करना है। कुछ कुछ चीजें पूरी करनी है तो पूरा फायदा होगा, अगर थोड़ा थोड़ा करे, अधूरा अधूरा करे तो अधूरा फायदा होगा। जैसे एक व्यक्ति है, एक भगत है, उससे मिलने उसका दोस्त आता है, वो कहता है अपने दोस्त को, तुम रुको थोड़ा मैं पूजा कर रहा हूं। तो उसका दोस्त देखता है क्या कर रहा है, तो देखता है गणेश जी की पूजा कर रहा है, वो कहता है ठीक है तब तक मैं एक काम करता हूं, एक गड्ढा खोदता हूं। थोड़ी देर के बाद देखता है लक्ष्मी जी की पूजा करता है, तो वो दूसरा गड्ढा खोदता है। थोड़ी देर के बाद देखता है नारायण की पूजा कर रहा है, वो तीसरा गड्ढा खोदता है बाहर। थोड़ी देर में देखता है काली की पूजा कर रहा है, फिर विष्णु की पूजा कर रहा है, ऐसे 10-12 गड्ढे खोद देता है। दोस्त, वो मित्र, भगत बाहर आता है, कहता है ये तुमने क्या कर दिया, वो कहता है मुझे प्यास लगी थी इसलिए मैंने गड्ढे खोदे, वो कहता है एक ही गड्ढा खोदना था ना, तो कहता है तुमको भी, तुम जो कर रहे थे वही मैं भी कर रहा था, 10 गड्ढे खोदे, एक ही खोद दिया होता अच्छे से तो पानी निकल जाता था। इसलिए इस भट्टी में जितने अब तक साधन बताए उसमें से एक भी अगर कोई कर ले अच्छे से, फुल प्रोटोकॉल के साथ, फुल प्रोटोकॉल के साथ, जो कल हमने चर्चा की थी 10 प्रकार के अन्न दोष, अगर उतना ही कर ले तो बाकी और किसी चीज करने की जरूरत नहीं है, एक ही किया जाए, केवल एक ही, प्राणिक संकल्प, प्राणिक सुविचार, प्राणिक भावनाएं, प्राणिक संबंध, प्राणिक तरंगे, कितनी सारी चीजें, उसमें से एक भी कर ली जाए परंतु फुल, तो पानी आ जाएगा। अगर एक नहीं कर सकते तो थोड़ा थोड़ा करो, पर ज्यादा ज्यादा करो फिर, पर टाइम बहुत है, हमारे जैसा टाइम और किसी के पास नहीं है। संसार के लोग दूसरी चीजों में बिजी है, हम उन सब से मुक्त है तो किया जा सकता है। तो सबसे पहली विधि है प्रार्थना। हम प्रार्थना करना भूल गए क्योंकि प्रार्थना करना और भक्ति करने को हम हेय दृष्टि से देखते हैं, हमें हम ज्ञानी है, हम मांगेंगे नहीं, ये मांगना नहीं है वास्तविक, हम आह्वान कर रहे हैं। आह्वान और मांगने में अंतर है, एक है भक्ति करना, एक है भीख मांगना, और एक है आह्वान करना। आह्वान और मांगने में क्या अंतर है? आह्वान करने वाला अधिकारी होता है, अधिकार से आह्वान करता है वो, हे शक्तिया आ जाओ, और एक है हे शक्ति आ जाओ, शब्द दोनों के एक ही है, हे शक्ति आ जाओ, एक है हे शक्ति आ जाओ। आह्वान अर्थात अधिकार, आह्वान अर्थात मास्टर ऑथोरिटी है उसमें, और मांगना अर्थात भिखारी, बेगर है। तो रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट थोड़ा सा डिग्निफाइड वर्ड है, तो यह आह्वान में थोड़ी रिक्वेस्ट भी जुड़ी हुई है, नम्रता जुड़ी हुई है थोड़ी, पर अधिकार भी है। परंतु भक्त में रिक्वेस्ट है पर अधिकार नहीं है, गरीबी है, अकिंचन है, संपन्न नहीं है, विपन्न है। तो दूसरी विधि है विजुलाइज करना, देखना, देखो, और जितना स्पष्ट हम देखेंगे, कलरफुल देखना है वो, कि ये मैं हूँ और मुझे कैसा, और केवल स्वास्थ्य के लिए ही नहीं, कोई भी चीज़ के लिए। घर में पारिवारिक संबंधों में कड़वाहट ही कड़वाहट है, देखो वो सब ठीक हो रहा है, जो मतभेद है वो दूर हो रहे हैं, जो मनोमालिन्य है वो ठीक हो रहा है, आपस में एक दूसरों के प्रति प्रेम है हर एक आत्मा का। ये देखो, कोई भी चीज के लिए भाषण देने जाना है वो भी देख लो पहले ही, डर है पता नहीं कौन क्या कहेगा, कौन क्या सोचेगा, हजारों आंखें घूरती हुई रहती है ना, वो भी संकल्प कि हर एक को अनुभव होगा, ये संकल्प करो। तो विजुलाइजेशन दूसरा, तीसरी विधि है मेंटल मूवी मेथड। इसमें और इसमें थोड़ा भेद है। विजुअलाइजेशन अर्थात केवल देखना, मेंटल मूवी बना देना अर्थात पूरा चित्रीकरण कंप्लीट, जैसे नाट्य रूपांतरण में कर दिया आपने, जिसमें डायलॉग्स है, जिसमें मूवमेंट है, सब कुछ है, जैसे एक मूवी होती है ना वैसे मूवी। जैसे कोई स्टूडेंट है और उसको वो देख रहा है मैं डीन बन रहा हूं, तो उसमें पूरी वो एक्शन के साथ सब कुछ देखता है विथ मूवमेंट, कि मैं उस तरह के कपड़े पहन के हूँ, मैं जा रहा हूँ, अब मेरा केबिन है, केबिन में प्रवेश कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, आ रहा हूँ, निकल रहा हूँ, सब कुछ देखना। एक मूवी की पिक्चर की पिक्चर पूरी क्रिएट कर दी है। ये जितना ज़्यादा और गहराई से देखेंगे उतनी वो चीज़ साकार होगी। बीमार है तो ये देखो मैं कितना स्वस्थ हूँ, अपने आप को राउंड लगाते हुए देखो नक्की के, एकदम ठीक, कुछ है ही नहीं, एकदम स्वस्थ हूं, एकदम निरोगी हूं। मेंटल मूवी क्रिएट करनी है एक, और पूरी अच्छे से मूवी क्रिएट करनी है, उसमें डायलॉग्स भरने हैं, दूसरे क्या कह रहे हैं हमारे बारे में वो भी सुनना है, सब कुछ। तो ये एक मेथड है जिसको कहते हैं मेंटल मूवी मेथड। अपनी मूवी बनानी है कोई भी, जो हम चाहते हैं हम स्वयं बने। अगर हम फरिश्ता बनना चाहते हैं उसकी भी एक मेंटल मूवी बनाओ, कि फरिश्ता कैसे चलता है, फरिश्ता कैसे बोलता है, फरिश्ता कैसे देखता है, फरिश्ता कैसे सोता है, फरिश्ता क्या खाता है, क्या खाते हैं फरिश्ते, लाइट। तो धीरे धीरे ठोस से तरल की ओर, तरल से गैस की ओर प्रवेश करना है। ठोस ठोस जो है, सॉलिड सॉलिड जो है, उससे लिक्विड लिक्विड की तरफ, लिक्विड लिक्विड से धीरे धीरे गैस की तरफ, ये यात्रा सूक्ष्म में अंदर ही अंदर चालू हो, तो शरीर में बहुत कुछ बदलाव आएगा, और बाकी सब कुछ ऊर्जा ही ऊर्जा है, नाम अलग अलग है बस, चाहे लाइट कहो, एनर्जी कहो, ची करो, कुछ भी कहो, एनर्जी है वो। काम दिन भर एनर्जी पर करते रहना है। नए स्थान पर गए, एक बाबा का कमरा, और अभी अभी बाहर से आए, रेलवे स्टेशन पर उतरे, एयरपोर्ट पर है, बस में है, कार में है, और फिर सेंटर में प्रवेश किया, सेंटर का भी बाबा का कमरा, फिर वो क्लासरूम और हमारा कमरा, ये सब में ऊर्जा के तल में अंतर है। ये हमको फील होने लगेगा कि अभी अभी स्टेशन से आए, वहाँ की ऊर्जा अलग थी, मधुबन में प्रवेश किया, यहाँ की ऊर्जा अलग है, वो बाबा का कमरा था, वहाँ की ऊर्जा अलग है। हमें याद है हम एक बार औरबिंदो आश्रम में गए थे, तो वहाँ पर कुछ दिन रहे थे, तो वहाँ पर एक कमरा था, और जैसे ही उस कमरे में प्रवेश किया, एकदम स्ट्रांग सेंसेशन लगे कि यहाँ वाइब्रेशंस कुछ और ही है, यहाँ क्या है। अभी तक जहाँ थे वो भी बहुत अच्छा स्थान था, बहुत ही अच्छा था, वो भी पूरी पहाड़िया ही पहाड़िया, पहाड़िया ही पहाड़िया, उत्तराखंड, पर वो जो स्थान था, वो जो वहां लेके गए, हमने कहा यहाँ क्या है, तो उन्होंने कहा बस बैठे रहो थोड़ी देर, थोड़ी देर बैठे, थोड़ी बात हुई, और लास्ट में उन्होंने बताया श्री अरविंदो के जो रिलिक्स रिमेन्स वो यहाँ पर उनको लाया हुआ था, और यहाँ उसको दफनाया गया था। रिमेन्स मतलब क्या कहते हैं, राख, अस्थिया वो यहाँ है। तो स्थान स्थान में अंतर होता है। जैसे जैसे हम स्थूलता से दूर होते और सूक्ष्मता में जाते, तुरंत तुरंत रियलाइज होगा कि यहां ये था, यहां वो था, यहां कुछ तो था पहले, क्योंकि हम अब काम अपने आप प्रकृति या ये सृष्टि अपने सारे रहस्य हमारे सामने खोल देगी। ये सृष्टि ये अपने सारे रहस्य हमारे सामने खोलना चालू करेंगी। ज्ञान कहीं किताबों से नहीं लिया जाता है, ना किसी से लिया जाता है। ज्ञान अंदर है, प्रज्ञा जगती है, जागे प्रज्ञा। अंतर प्रज्ञा जब जगती है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, अपने आप बहुत सारी चीजें पता लगने लगती है। ये ऐसा होगा, ये वैसा होगा, क्योंकि सृष्टि अपने रहस्य खोलेगी। तो काम किस तल पर करना है? ऊर्जा के तल पर करना है। इसलिए नए स्थान पर जब भी जाते हैं, थोड़ी देर बैठो और फील करो वहां की एनर्जी को। पर इसका अभ्यास रोज करना है। यह भी एक स्किल है, यह भी एक प्रैक्टिस है। रोज प्रकृति में जाओ, बैठो 15 मिनट, फील करो, देखो क्या होता है। फील करो एनर्जी को, आवाजों को सुनो, पक्षियों की आवाजें, जो भी आवाजें हैं, ऊर्जा। और फिर बाबा के कमरे में जाके बैठो, फिर आवाज सुनो, बाबा मुझसे क्या कह रहा है, ऊर्जा। तो थर्ड मेथड, एक मेंटल मूवी क्रिएट करनी है, पूरी की पूरी मूवी। 1 घंटे की क्रिएट करो, 2 घंटे की करो, या डॉक्यूमेंट्री क्रिएट करो, जो करना है करो, पर मूवी क्रिएट करनी है अपनी। यह है तीसरी मेथड। चौथी मेथड, स्लीपिंग टेक्निक, इसको कहते हैं स्लीप टेक्निक। रात को सोते समय और सुबह जागने से उठते समय, ये दो समय ऐसे हैं जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड सक्रिय होता है बहुत तीव्रता से। हमारे दो मन है, वैसे है एक ही दो, बीच में एक के बैरियर है, प्री कॉन्शियस, ये कॉन्शियस, ये सबकॉन्शियस, बीच में प्री कॉन्शियस है। रात को सोते समय ये खुलता है धीरे धीरे, इसलिए रात के सोते समय जो संकल्प दिए जाएंगे वो बहुत गहरे चले जाते हैं। कई सारी ध्यान विधियां हैं जिसमें यह सिखाया जाता है, रात को सोते समय सोचो साक्षी 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 साक्षी, विटनेस विटनेस विटनेस। तो वो साक्षी भाव जैसे ही सुबह उठते हैं, तुरंत एक साक्षी भाव अपने आप आता है। और साक्षी भाव अध्यात्म की परम अवस्था है, जिसमें हम सारे ड्रामा को देख रहे। साक्षी भाव, कल की साकार मुरली, ड्रामा के पट्टे पर मजबूत रहो, नाराज होना नहीं है, सब कुछ साक्षी होकर देखो, जो कुछ हो रहा है ठीक चल रहा है, मैं साक्षी हूं, मैं अलग हूं, मैं ऑडियंस हूं, और ये सब खेल चल रहा है, यहां पर फिल्म चल रही है, मैं देख रहा हूं। तो हमने कौन सा भाव प्रस्थापित किया? साक्षी का भाव। कब किया? सोते समय। उसी तरह मैं ऊर्जावान हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं निरोगी हूं, मैं निरामय हूं, सभी बीमारियों से मुक्त हूं। अभी दर्द हो रहा है रात को, सोचो मैं उठूंगा, उठते ये दर्द चला जाएगा, उठेंगे दर्द चला जाएगा। संकल्प ये दे दिया है सबकॉन्शियस माइंड को। सबकॉन्शियस माइंड वो भूमि है जहां पर बीज पिरोने हैं, वपन करना है बीजों का। जैसे ही बीज वपन होगा, दूसरे दिन वो अंकुरित होगा, पल्लवित होगा, वृक्ष बनेगा। और एक चीज वो आगे देखेंगे नेक्स्ट इसमें, तो वो भी सबकॉन्शियस रात को सोते समय ही करना है। ये सोने का जो समय है इसको मेडिटेशन बनाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी नींद मेडिटेशन हो जाए, पूरी नींद रात की मेडिटेशन हो जाए। हम ऐसे सो रहे जैसे सो ही नहीं रहे, सो रहे नहीं सो रहे, उसके बीच की अवस्था एक सुषुप्ति अवस्था, जागरण और निद्रा के बीच की अवस्था, और उठ रहे तो एकदम फ्रेश। 2 घंटे में 4 घंटे की नींद पूरी। तो रात को सोते समय इसके लिए विशेष काम करना है। सबसे पहला नियम, पूरा अंधेरा कर दो कमरे में, नो लाइट्स। पहला नियम, लाइट्स नहीं, कोई भी लाइट नहीं, ना जीरो बल्ब, कुछ नहीं। दूसरा नियम, जितना हो सके अगर आपको इमरजेंसी नहीं है तो कमरे में इलेक्ट्रॉनिक्स हो ही ना, मोबाइल दूसरे कमरे में रख दो, फ्लाइट मोड पे डाल दो, या स्विच ऑफ कर दो, या साइलेंट कर दो। इलेक्ट्रॉनिक्स का स्पर्श शरीर को ना हो, सेकंड, तीसरा, सोने का समय और उठने का समय जितना हो सके फिक्स, और चौथा, असंभव संभव, चौथा जितना हो सके धीरे धीरे खटिया को छोड़ दो। जमीन पर नीचे, ये जो है ना, ये इसको क्या कहते हैं, चटाई, इससे बेस्ट और कुछ भी नहीं है सोने के लिए। पहले तीन दिन बहुत आधी रात को उठ के बेड पर जाना पड़ेगा, इतना दर्द होगा, और एक खिड़की थोड़ी सी खुली रखो, ठंडी ज्यादा है, क्रॉस वेंटिलेशन होना चाहिए। दूसरा, तकिया को हटा दो। बैक की जितनी प्रॉब्लम्स है धीरे धीरे ठीक होने लगेगी, नेक की जितनी प्रॉब्लम्स है धीरे धीरे ठीक होने लगेगी, रीअलाइनमेंट होगा। बहुत सारी स्टडीज है मेडिकल की, जो बिस्तर बेड पे रहते हैं ना, ऐसा ऐसा बेड जितना डनलप का उतना ज़्यादा प्रॉब्लम उसमें, उतने ज़्यादा हेल्थ इश्यूज। जितना फ्लैट लकड़ी वाला, खास मिलते हैं जापान में, चीन चाइना में, तो इस तरह के खास फ्लैट, बट सबसे बेस्ट है नो मैट्रेस। धीरे धीरे फिर यही अच्छा लगता है, और धीरे धीरे इसी की आदत पड़ती है, और धीरे धीरे एक ऊर्जा का तल बढ़ जाता है शरीर का। हम प्राण के तल पर काम कर रहे हैं, कुछ और हो जाएगा, छोड़ेंगे ये, छूटेंगे विकार, क्योंकि अंतर मन में सब जुड़ा हुआ है। हम एक विकार से छूटते हैं तो एक विकार दूसरे विकार से जुड़ा है, दूसरा विकार तीसरी आदत से जुड़ा है, तीसरी आदत एक संस्कार से जुड़ा हुआ है। आत्मा के सबसे गहरे तलों पर दो ही चीज है, यहां आत्मा सुख शांति आनंद पवित्रता है, उसके अगला जो तल है वहां दो ही चीज है जो हमारे सबसे गहरे है, काम विकार और भोजन, फूड एंड सेक्स। इसके अतिरिक्त काम बस इन्हीं दो पर करना है, जैसे ही एक छूटेगा दूसरा छूट जाएगा, बाकी सब परिणाम के रूप में प्राप्त होगा अपने आप, क्योंकि ये दो अपने आप से जुड़े हुए हैं, और इन दोनों से बहुत सारी दूसरी सुख सुविधाओं की आदतें जुड़ी हुई है। एक सुख सुविधा की आदत पर आक्रमण करो, वो आदत इन दो आदतों को हिलाएगा, ये हैबिट्स है, सब कुछ हिलने लगेगा, अनुशासन आएगा, संयम आएगा। काम शरीर पर करना है, परिणाम मन पर होगा, आत्मा पर होगा। तो स्लीप टेक्निक में सो रहे और सोचो, मुझे क्या आनंद आ रहा है सोने में, वाह 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 वाह, इतना आनंद तो आज तक नहीं आया उस खटिया में, उस बेड पर, उस तकी, वो सब लेकर जो आज आ रहा है। या झोपड़ी तो माजा, मराठी में पोएम है एक, महाली मऊ मोई महाली मऊ बिछाने कंदील शाम दाने, अम्मा जमीन माने या झोपड़ी तो माना। वो महलों में क्या है, सब महल में सब कुछ है, पर मैं कहाँ सो रहा हूँ, इस जमीन पर। जाता त्या महाल्या मत जा व शब्द आला, उस महल में जाओ तो कहते मत जाओ, दारा से ना ही दो रहा या झोपड़ी तो माजा, मेरे झोपड़ी में दरवाजा भी नहीं है, बाबा कहाँ रहे झोपड़ी में लास्ट तक, क्यों, क्योंकि प्राणिक झोपड़ी है वो, प्राणिक ऊर्जा है वहां पर। जितना जमीन से स्पर्श होगा हमारा शरीर का, उतनी जमीन की ऊर्जा हम में बहेगी, एनर्जेटिक कनेक्शन होगा, एक आदान प्रदान होगा ऊर्जा का, हमारी पवित्रता जमीन को जाएगी, जमीन की प्राण ऊर्जा हमको आएगी, लेन देन। तो स्लीप टेक्निक, रात को सोते समय अच्छे अच्छे संकल्प, पावरफुल संकल्प, कौन से संकल्प के साथ सोना है उसकी भी लिस्ट बना के रखनी है, कि मुझे ये बनना है तो ये संकल्प करके सोऊंगा, चाहे शरीर की बीमारी हो, कोई दर्द हो, कोई विकार हो, बीमारी हो, कैंसर हो, कुछ भी हो, कल सुबह मैं उठूंगा बीपी सामान्य हो जाएगा, कल सुबह मैं उठूंगा मेरे शरीर का ये रोग ठीक हो जाएगा अपने आप, क्योंकि ये जो मेरी ये नींद नहीं है, महानिद्रा में जा रहा हूं मैं, एक महा क्या कहेंगे इसको, समाधि से निकल के वापस उतर रहा हूं मैं, इसमें तो ठीक होना ही है मुझे। कहाँ सो रहा हूं? परमात्मा गोद में सो रहा हूं। जो आत्मा परमात्मा गोद में सो के उठ रही है वो क्या विकारों के साथ उठेगी? रोगों के साथ उठोगी? इम्पॉसिबल। ना आए तो बहुत ही अच्छा। तो तीसरी अगली टेक्निक है स्लीप टेक्निक। नेक्स्ट टेक्निक है फॉरेस्ट बाथ। फॉरेस्ट बाथ अर्थात शिंदरिन योको। इसमें क्या करना है, बीच बीच में जिनको बहुत सारे रोग होते हैं या शरीर में बहुत सारी बीमारियां हैं, बीच बीच में हफ्ते में एक बार या जब भी समय मिले जंगल स्नान करना है, जंगल से गुजरना। और इसमें क्या करना है, जंगल में जाने के बाद फुल प्रोटेक्शन के साथ जाओ, परंतु वहां जाकर किसी स्थान पर बैठो एकांत में, और बैठने के बाद थोड़ा सा मेडिटेशन करो और सोचो कि ये जो इतने पेड़ है इनकी सारी ऊर्जा मेरे अंदर प्रवेश कर रही है, धरती की ऊर्जा मुझ में प्रवेश कर रही है, यहाँ की जो शुद्ध वायु बंदर है, एक गाड़ी ट्रक मोटर कार कुछ भी नहीं है वहां पर, किसी का आवाज तक नहीं है, ताकि मनुष्यों का भी आवाज नहीं है वहां पर, ऐसे स्थान जहां पर शुद्ध ऊर्जा बह रही है। जैसे सुबह के समय उधर जाओ सनसेट रोड या फिर ये गुरुकुल, ये बहुत सारे स्थान है, पीस पार्क, ग्रुप में जाओ, दो लोग जाओ सुरक्षा की दृष्टि से, परंतु जहां पर भी जाओ वहां पर मौन में जाओ, बैठो और मेडिटेशन करो, और जहां रोग है जो बीमारी है उस पर काम करो, बीपी है, शुगर है, डायबिटीज, जो भी है, सोचो ये ऊर्जा पूरा मुझ में बह रही है, ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। शिनरिन योको एक साइंटिस्ट है, इसने इसको हीलिंग टेक्निक के रूप में डेवलप किया है, ये जो बताया इसको एज ए हीलिंग टेक्निक के रूप में डेवलप किया है शिनरिन योको। उसका नाम है डॉक्टर क्लिन ली। उसकी किताब है फॉरेस्ट बेदिंग, हाउ ट्रीज कैन हेल्प यू फाइंड हेल्थ एंड हैप्पीनेस। वो कहता है इससे स्ट्रेस कम होगा, इम्यूनिटी बढ़ेगी, कैंसर की रिस्क कम हो जाएगी, फोकस बढ़ जाएगा, मूड इंप्रूव हो जाएगा, इंट्यूशन बढ़ जाएगा, अंतरप्रज्ञा एंड सेंस ऑफ ओवरऑल वेलबींग, पूरा ओवरऑल वेलबींग का अनुभव होगा। महत्वपूर्ण, मोबाइल स्विच ऑफ कर देना, नोट इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक टच नहीं होना चाहिए यह सब करते हुए, पर थोड़ा सुरक्षा की दृष्टि से भी। एक हॉस्पिटल में वो जो शैतान सिंह पार्क है ना, हमारी एक बहन को लॉकडाउन के समय वहां पर बेयर फुट वॉक करने लगी मोबाइल रख के, एक लड़का है मोबाइल लेके भाग गया, उसको पकड़ के लाए फिर। दूसरा, धीरे धीरे चलना। फॉरेस्ट में जब पहुंच गए तो धीरे धीरे चलना पहला, दूसरा डीप ब्रीदिंग का अभ्यास करना, और तीसरा बीच बीच में बैठ जाना किसी रॉक पर, किसी जमीन पर, और फिर मेडिटेशन करना। और एक चीज, अपने सारे सेंसेस को ओपन कर दो, आंखें बंद करके सुनो क्या क्या सुनाई दे रहा है, आंखें खोल कर देखो, एक एक पत्ता, एक एक फूल, उसके रंग को ऑब्जर्व करो बहुत माइन्यूटली, तो ये सब कुछ हीलिंग करेगा। कलर थेरेपी होगी, एरोमा थेरेपी हो रही है, बेयरफुट वॉक थेरेपी हो रही है, सब कुछ, साउंड थेरेपी हो रही है, सब एक साथ सारी थेरेपीज होगी, और सबसे मेन हम बाबा की याद में बैठ रहे हैं, और धीरे धीरे फिर आत्माभिमानी स्थिति में आओ कि मैं आत्मा शरीर से बाहर चली, अपने आप होगा और बहुत सहज होगा। तो इसको कहते हैं फॉरेस्ट बाथ, शिनरिन योको। अगली टेक्निक है थैंक यू टेक्निक, ग्रेटिट्यूड। हमारे बहुत सारे रोग जो है वो अंदर छिपी हुई घृणा की वजह से है, हेट्रेट। क्या हम में इतनी शक्ति है कि जिसने हमारा 10 बार अपमान किया है उसके प्रति हमारे मन में जरा भी घृणा नहीं? मुश्किल है। ऐसी कुछ आत्मा है रेडीमेड जिनके हृदय में इतना प्रेम भरा है, इतना प्रेम भरा है, जो कभी किसी से घृणा कर ही नहीं सकती, जिन्होंने उनके साथ बहुत ही अनादर पूर्वक अपमान व्यवहार किया था, अपमानना की थी, फिर भी उनके प्रति घृणा उत्पन्न नहीं होती, ऐसी बहुत सी आत्माएं हैं संसार में। तो ये जो थैंक यू का भाव है, ग्रेटिट्यूड का, ये हमारे रोगों को हमसे दूर लेके जाएगा। इसलिए बीच बीच में सबके लिए धन्यवाद, अपने जीवन को 10-10 सालों में डिवाइड करो, बचपन से 10 साल, फिर अगले 10 साल, फिर अगले 10 साल, 50 से 60, मतलब 30 से 40, 40 से 60, 60 से 70, अगर कोई 70 साल का है तो 10-10 सालों में जो जो घटनाएं हुई उनको याद करो, और उन 10 सालों में जो जो घटनाएं और जो जो व्यक्ति उसमें आए, उन्होंने जो जो हमारे साथ किया, उन सब के लिए धन्यवाद, और जो आने वाले हैं उनके लिए भी धन्यवाद। क्योंकि अंदर जो घृणा होती है, नफरत होती है, वो धीरे धीरे रोग का रूप लेती है। वही डायबिटीज बनती है, वही शुगर बनती है, वही थायराइड बनता है एक दिन, वही हार्ट में ब्लॉकेजेस बनता है, वही घुटने का दर्द बनता है, वही आंख में जाके कैटरैक्ट बनता है, सूक्ष्म रूप में, सूक्ष्म में जितना हमने जमा कर रखा है सूक्ष्म में, उन सब से हमको मुक्त होना है। इसलिए बेशर्त सबको माफ कर दो, अनपार्डन, अनकंडीशनल पार्डन, चाहे तुमने जो किया है, जैसा भी किया है, माफी नहीं धन्यवाद, अच्छा किया किया, नहीं तो मुझे सबक नहीं मिलता। नॉट अ सिंगल ब्लो इज अनडिजर्व्ड, स्वामी विवेकानंद ने एक जगह लिखा है, कहा है स्पीच में, नॉट अ सिंगल ब्लो इज अनडिजर्व्ड। जो तुमको तमाचा, लाफा या जो घूसा मिला है ना, तुम उसके लायक थे, जरूरी था तुम्हारे लिए, यू डिजर्व्ड इट, नॉट अ सिंगल ब्लो इज अनडिजर्व्ड। इसलिए ये नहीं कहना ये मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, अरे हुआ हुआ, खेल है, किस किस के प्रति घृणा पाल के रखेंगे, ग्रजेस, ऐसा तो हो नहीं सकता कि सब हमारी तारीफ ही करे, महान ही कहें, ऐसा नहीं हो सकता, उनकी भी आवश्यकता है, और ये हमेशा रहे, हमेशा अगर पॉजिटिव लोग रहेंगे तो साथ में निगेटिविटी भी रहेगी, बैलेंस के लिए जरूरी है, इन यंग, एक तरफ चंद्रगुप्त है, एक तरफ वो अशोक है, ये इतनी पॉजिटिविटी से भरे, तो दूसरी तरफ उनके सारे शत्रु खड़े हैं, षड्यंत्र ही षड्यंत्र, षड्यंत्र ही षड्यंत्र, दोनों साथ साथ चल रहा है, एक तरफ संपूर्ण निरागसता तो दूसरी तरफ षड्यंत्र, सम्राट कैसे बन रहे हैं, षड्यंत्रों के बीच सम्राट बने जा रहे हैं, विश्व का मालिक कहां बनोगे, षड्यंत्रों के बीच, ऐसे थोड़ी ना बन जाओगे, तुम बहुत अच्छा, तुम बहुत अच्छा, हर एक षड्यंत्र रच रहा है, हर एक, पर इन्हीं षड्यंत्रों के बीच अखंड अखंड भारत का सम्राट बनना है, ये है यात्रा प्राणिक। तो माफ कर दो, ये बहुत हिम्मत लगती है, इसमें सबसे बड़ा काम है ये। हम बीमार थे, किसी से हमने कहा कि मुझे हॉस्पिटल पहुंचाओ, वो कहता है मेरे पास टाइम नहीं है, तुम देख लो अपना। अब वो बीमार है और हमसे कहता है पहुंचा दो, तो हम पहुंचा देते हैं बिना याद किए, वो याद दिलाए उसको, फिर भी अंदर मन में चलता तो है, ये वही है, ये वही है। बिंदु लगा दो, थियोरी बहुत आसान है, सबकॉन्शियस माइंड माफ नहीं किया है, कम से कम अभी भी इसी समय सब बैठे हैं ना, 10 लोग तो अंदर है, जिसको हमने प्रतिज्ञा किया इनको मैं माफ नहीं करूंगा, मेरे बुरे वक्त में इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया है, मुझे जरूरत थी, बीमार 104 बुखार चल रहा था, और वो कमरे रूम पार्टनर आता था, अपना काम करके चला जाता था, पूछता भी नहीं था कि क्या चाहिए, सूक्ष्म नफरत है, रहता है, काम बहुत बड़ा है, शुभ भावना, ये जो बाबा कह रहे हैं ना, ये बहुत ही बड़ा काम है, असंभव टाइप है, असंभव ही समझ लो इसको, सबके प्रति शुभ भावना, सब जो हमारी तारीफ करते, स्तुति करते, हमें महत्व देते, हमारे केयर करते, उनके लिए तो बहुत ज्यादा है, पर जो नफरत करते, घृणा करते, ग्लानी करते, अपमान करते, उनका क्या। तो टेक्निक क्या है, ग्रेटिट्यूड, थैंक यू, जैसे थैंक यू रोज कहने लगोगे अपनी बीमारियों से मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां इस घृणा की वजह से है। शुगर अपने आप कंट्रोल में आएगी, नई टैबलेट है ये, टैबलेट ग्रेटिट्यूड, टैबलेट थैंक यू वाली। तो आशीष भाई, हाँ वो तो है, वो हमने पहले ही कहा है, वो सब चलने दो, जो भी ले रहे हैं आयुर्वेद, होम्योपैथी, जो भी चल रहा है वो सब चालू रखो, ये जो प्राणिक चिकित्सा है ये उसके साथ जोड़नी है, और इसका जब डोज बढ़ेगा तो अपने आप बाकी सब छूट जाएगा अपने आप। हाँ, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, ये इधर ना इधर के ना उधर के। नेक्स्ट टेक्निक है आदेश, डिक्री मेथड, इसको कहते हैं डिक्री मेथड। आदेश दो, अपने शरीर को आदेश दो, अपने सेल्स को आदेश दो, अपने लीवर को आदेश दो, हे लीवर आज से तू सभी बीमारियों से मुक्त, हे फेफड़ो, हे लंग्स मैं तुम्हें आदेश देता हूं मुक्त हो जाओ, हे मेरे खून ब्लड सारी इंप्यूरिटी से मुक्त हो जाओ, आदेश दो। जैसे प्राणिक न्यूट्रिशन में एक आदेश दिया जाता है, हे मेरे शरीर आज से तुझे जो कुछ चाहिए सारा तेरा न्यूट्रिशन प्रोटीन विटामिन सब कुछ प्राण ऊर्जा से प्राप्त होगा, हैंस फोर्थ आई ऑर्डर यू दैट यू गेट ऑल द विटामिन्स मिनरल्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द प्राणा, आई लीव माय प्राणिक एनर्जी, मुझे किसी भोजन स्थूल की आवश्यकता नहीं है, मॉर्टल फूड शाकाहारी भोजन ग्रॉस फूड सॉलिड फूड लिक्विड फूड कुछ नहीं चाहिए, मेरी सारी शक्ति मुझे ऊर्जा से प्राप्त हो रही है। ये देखो कितना बड़ा आदेश है। बाबा कहते शक्तियों को आदेश करो, वैसे आरोग्य को आदेश करो, बीमारी को आदेश करो निकल जा तुम्हारा काम हो गया, इसको कहते हैं ऑर्डर डिक्री मेथड, आदेश की मेथड। एंड लास्ट अफर्मेटिव मेथड, अफर्मेटिव अर्थात जिसमें हम अफर्मेशंस करेंगे, घोषणा करेंगे, अफर्मेशंस बहुत सारे सुझाव, अफर्मेशंस में सुझाव देंगे स्वयं को, रोज सुझाव देते रहेंगे। और ये सुझाव कब देंगे, सोते समय उठते समय जागते समय चलते समय, चल रहे सोचो चलते चलते नॉर्मल जो चीज़ें चल रही है, कुछ भी करते समय नहा रहे सोचो ये पानी मुझे शुद्ध कर रहा है मेरी बीमारियों से मैं मुक्त हो रहा हूँ, आत्म सुझाव अफर्मेशंस। खा रहा हूँ ये खा रहा हूँ ये खाते ही मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी, इस विश्वास के साथ खाओ इस श्रद्धा के साथ खाओ। पेशेंट होते हैं ना जिनका जितनी ज़्यादा फेथ होता है डॉक्टर पर जितना जल्दी ठीक होते, और जो अपने साथ गूगल का वो लेके आते हैं ना साइड इफेक्ट वाला वो कभी ठीक नहीं होते, हाफ नॉलेज लेके आते। डॉक्टर साहब आपने वो जो गोली लिखी थी ना उसका मैंने पूरा पढ़ लिया, क्या क्या पढ़ा ये पढ़ा, ये हो रहा है ये सब हो रहा है, जितने ज़्यादा साइड इफेक्ट पढ़ोगे वो सब तुमको होंगे। वो बेचारा गाँव का पेशेंट आता है गरीब ग्रासिया वो कुछ नहीं पढ़ता है उसको कुछ भी दो ठीक हो जाता है, और जो पढ़े लिखे होते हैं वो थोड़ा कम ठीक होते हैं, टाइम लगता है उनको ठीक होने को क्योंकि उनका तर्क ही बाधा है, वो भी चाहिए परंतु कई बार वो बाधा भी बन जाता है। तो अफर्मेशंस, अफर्मेशंस अर्थात आत्म सुझाव कंटिन्यूअस देते रहना। डॉक्टर कुहे था फ्रांस में, उसने लोगों मरीजों को बस इसी आत्म सुझाव से ही ठीक किया 17वीं-18वीं शताब्दी में, जो भी आता था उसको बस एक ही मंत्र देता था, बस एक ही कहते रहो मैं ठीक हूँ मैं ठीक हूँ मैं ठीक हूँ मैं ठीक हूँ मैं ठीक हो गया मैं ठीक हो गया मैं ठीक हो गया, बस यही रिपीट करते रहो दिन रात रिपीट करते रहो, आई एम हेल्दी आई एंजॉय रेडिएंट हेल्थ, कोई बीमारी मुझे स्पर्श नहीं कर सकती। और इसके साथ जुड़ी एक कहानी भी है, इसके पहले भी सुनाई थी। एक पति था जिसको बहुत सारी बीमारियां थी, वो ठीक ही नहीं हो रहा था, तो फिर किसी ने उसको सुझाव दिया कि तुम ऐसा करो रिपीट करो मैं स्वस्थ हूँ मैं स्वस्थ हूँ मैं स्वस्थ हूँ, और वो ठीक हो जाता है। पत्नी को भी आश्चर्य होता है, कमाल है ये तो ठीक हो गया, कब तक कभी ठीक नहीं हुआ। फिर देखा पत्नी ने आजकल इसको मुझमें इंटरेस्ट ही खत्म हो गया है पति का, ये मेरे से बात नहीं करता मेरे पास नहीं आता, वो सोचती आखिर हो क्या रहा है इसको। फिर तो ये कुछ तो कर रहा है क्योंकि अभी ये बिल्कुल पति जैसा व्यवहार नहीं कर रहा है, एकदम ही डिटैच हो गया। फिर वो एक बार जाती है बाथरूम में, कान लगा के सुनती है वो क्या कह रहा है, तो वहां वो रिपीट करते रहता हूं ये मेरी पत्नी नहीं है ये मेरी पत्नी नहीं है ये मेरी पत्नी नहीं है। कुछ भी रिपीट करो उसका प्रभाव तो होगा, इसका मेरे से कोई संबंध नहीं है इसका मेरे से कोई संबंध नहीं, धीरे धीरे उससे डिटैचमेंट हो जाएगा। वो तो पता नहीं अब बाहर निकला तो क्या हो गया। तो ये टोटल कितनी टेक्निक्स बताइए, 8। पहली बताई प्रार्थना, तो थोड़ा प्रार्थना करना सीखना है, अगर बीमार हो बुखार आ जाता है सर्दी जुकाम हो कुछ भी हो जाए प्रार्थना, किसके लिए प्रार्थना, भीख नहीं मांगनी है आह्वान करना है कि हे शक्ति मेरी सारी रोगों से मुझे मुक्त कर, सर्वे संतु निरामय जैसे सबके लिए करते थे, खुद के लिए पहला टेक्निक। सेकंड टेक्निक, विजुलाइज करो अपने आप को, देखो जो मैं बनना चाहता हूँ वो देखो, ये बन चुका हूँ। तीसरा, मेंटल मूवी, एक पिक्चर क्रिएट करनी है पूरी की पूरी मूवी, 2 घंटे की, 3 घंटे की। और कभी कभी क्या करना है, स्वप्न देखना है, ड्रीम करना है, ऐसे लेट जाना पहाड़ों पर और स्वप्न देखना चालू करो। क्या स्वप्न देखेंगे, मैं फरिश्ता हूँ, उड़ रहा हूँ, कुछ भी, ड्रीम, स्टार्ट ड्रीमिंग। हमारे जो शरीर के ऑर्गन्स है, एक वो किताब है स्कूल ऑफ गॉड, उसमें वो लेखक पूछता है ड्रीमर से, क्या हम बिना खाए पिए जी सकते? वो कहता है फिर हमारा शरीर क्यों बना हुआ है, तो ये ऑर्गन्स किस लिए? ड्रीमर कहता है दे आर टू ड्रीम। ये ऑर्गन किस लिए? ड्रीम करने के लिए है। जब तुम ड्रीम करना, लीवर किस लिए? ड्रीम करने के लिए, वो स्वप्न देखने के लिए। तो स्वप्न देखना चालू करना है। क्या स्वप्न देखेंगे? जो हम बनना चाहते हैं, मेंटल मूवी। अगला, स्लीप, रात को सोते समय ये काम तेजी से करना है, बहुत अच्छे से हो सकता है ये काम, क्योंकि सोने का जो समय है ना, अगर विकारी संकल्पों के साथ सोओगे तो उठोगे भी उसी संकल्प के साथ। सोने का अंतिम संकल्प उठने का प्रथम संकल्प बन जाता है। इसलिए मोबाइल, टीवी, इंटरनेट, मूवीज, ट्रेलर्स, सीरियल्स, ये सब बंद, जितना हो सके कमरा इंटरनेट फ्री हो, वाईफाई फ्री हो। नेक्स्ट मेथड, फॉरेस्ट बाथ, थोड़ा सा बीच बीच में, पर इसमें एक है, प्रकृति से प्यार अर्थात प्रकृतिपति से प्यार अर्थात, कल बताया था प्रकृति से प्यार, और प्रकृति से प्यार अर्थात प्राकृतिक आहार से प्यार। प्रकृति में जा रहे, पिकनिक मनाने जा रहे, जंगल वॉक के लिए जा रहे, पर साथ में भेल और साथ में सैंडविच और साथ में चाय और साथ में डिब्बे बहुत सारे, रोटियां, थेपला, पराठे। प्रकृति में जा रहे हो तो प्रकृति का आदर है, प्राकृतिक आहार करो, नहीं तो वो प्रकृति का अनादर है। प्रकृति पति से प्यार अर्थात प्रकृति से प्यार, और प्रकृति से प्यार अर्थात प्राकृतिक आहार से प्यार। हाँ, वहां जो है वो लो तो बहुत ही अच्छा, करुंदे वगैरह नहीं हो तो लेके जाओ फल, और वो जूसर लेके जाओ, हैंड प्रेस, हम लोग तो वही लेके जाते हैं, हैंड प्रेस जूसर आता है, वो एक जन पकड़ता है और एक संतरे की थैली, दो लोग इसमें होते हैं, वहां जाके घुमाओ और निकालो और जूस दो सबको। हाँ, नेक्स्ट मेथड, थैंक यू सबको, पर सबके सामने जा जाके मत बोलते जाना थैंक यू, ये आंतरिक प्रक्रिया है। अगला, आदेश दो, हे मेरी आंखें, हे मेरे कान, हे मेरे नाक, हे मेरे मुंह, हे मेरे हाथ, तू दर्द से मुक्त हो गया है। अगला, अफर्मेशन, आत्म सुझाओ। तो आज, हाँ आज फ्राइडे, आज हमारा शाम से ड्राई डे चालू होगा, शाम को 6 बजे से, तो अगले कल शाम को 6 बजे तक 24 घंटे, न खाना न पीना, निर्जला प्राणा डे, ड्राई डे, कॉस्मिक डाइट, शाम को 6 बजे से कल शाम को 6 बजे तक, 24 आवर्स। जो नहीं कर सकते वो जाएंगे लिक्विड्स पर, लिक्विड्स अर्थात सारे जूसेस, सारे फ्रूट जूसेस, चबाना नहीं बस, केवल जूसेस पर। जो ये नहीं कर सकते उनके लिए ऑप्शन है, जिनको दवाइयाँ चालू है वो भी ये कर सकते, फ्रूट जूसेस वाला रसाहार, जूस थेरेपी या लिक्विड डाइट। तो वो शाम को 6 बजे से, हर फ्राइडे 6 बजे से सैटरडे 6 बजे तक, एवरी वीकली प्राणा डे, कॉस्मिक डाइट पर रहना है, अपने शरीर को हफ्ते में एक दिन प्राण आहार पर रहने की आदत डालनी है। ठीक है, सब करेंगे ना? यस। तो यामी गुरुम शरणम भव वैद्यम, शरण हो जाओ, शरण में आ जाओ। ओम शांति।
Yeah.